नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्योहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची से बात की। उन्होंने श्री अराग्ची को नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बताया कि ये बातचीत संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों और व्यापक क्षेत्र पर इसके प्रभावों के बारे में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए सतर्क नागरिकों के सहयोग से सशक्त सेना की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं से दूर चला गया है, इसमें आर्थिक, डिजिटल, ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र सहित राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल है। उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोराखाल के स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही।
आज के वारफेयर में इकोनॉमिक वारफेयर के माध्यम से देशों को कमजोर किया जाता है। साइबर वारफेयर के जरिए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस डोमेन में भी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज इन्फॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जहां नैरेटिव को कंट्रोल करना भी वारफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका।
इससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब तक इस तरह के संकट से बहुत हद तक सुरक्षित है। सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाली कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि ये आवंटन सोमवार से लागू होगा। केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने स्पष्ट किया है कि राज्य में मतदाता सूची संशोधन में भाग लेने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ की सुविधाओं में कटौती की खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के संशोधन में भाग लेने वाले बीएलओ के लिए 2,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दलगांव से कृष्णा साहा और सिसी बरगांव से जीवन गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया है। कोवलम से टीएन सुरेश, पिरुमाडे से वी राथेश, मावेलिकारा से अजीमन, अरुविकारा से विवेक गोपन और चावरा सीट से केआर राजेश को टिकट दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देशों ने आज ईरान से हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का आग्रह किया। एक संयुक्त बयान में इन देशों ने इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और ऊर्जा केंद्रों पर ईरान के हमलों की निंदा की गई। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में अनाहत सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज अनाहत ने तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में अभय सिंह ने भी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज अभय ने अमित शेनराजचंद्रन को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में वीर चोटरानी का मुकाबला संजय जीवा से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।